योएल की पुस्तक और लाओदिकिया की सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 10।
नंबर 10।
हम यशायाह के दर्शन के उस भाग पर चर्चा कर रहे हैं जो अध्याय 7 से शुरू होकर अध्याय 12 के अंत तक चलता है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1850 में प्रभु ने दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाया एकत्र करने के लिए अपनी शेष प्रजा को। हम 1884 से 1863 तक के मार्ग चिन्ह स्थापित कर रहे हैं। 1850 और दूसरी बार का एकत्रीकरण उन मार्ग चिन्हों में से एक है।
अध्याय 7 के पहले पद से यशाया का दर्शन आरंभ होते ही उस दिन जैसे किसी भी वाक्यांश का अध्याय 7 की स्थापित संबरवा में ही वर पर आता है। उसते नुकदाबी से वेचना की एक कुंजी ये समझना है कि भविष्यवाणी दोहराने और विस्तार करने के सिद्धांतों पर कार्य करती है और यही नियम इस दर्शन में लागू है।
विभिन्न भविष्य सूचक सत्य जो यशायाह की दृष्टि में छठे अध्याय से आरंभ होकर चिन्हित किए गए हैं उन्हें इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि सबसे पहले और प्रमुख यशायाह उस आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसे नौ बदव पर अभिषिक्त किया गया है ताकि वो ये घोषित करे कि अंतिम वर्षा आ पहुंची है। उस पवित्र परिप्रेक्ष्य में यशायाह का 7वां अध्याय उसी भय को चित्रित करता है जिसे भविष्यद्वक्ता ने 6ठे अध्याय में व्यक्त किया था जब उसने ये प्रश्न पूछा कि कब तक उसे नौ बदव का संदेश उस धर्मत्यागी कलीसिया को देना पड़ेगा जो आंखें होते हुए भी देखना नहीं चाहती और कान होते हुए भी सुनना नहीं चाहती।
उस दर्शन में दुष्ट और मूर्ख राजा आहाज एक लाओदिकियाई का प्रतीक है जो अंतिम वर्षा के संदेश की चेतावनी स्वीकार नहीं करता जिसे दुष्ट और मूर्ख आहाज का सामना करने वाले पहरेदार प्रस्तुत करते हैं और जिनका प्रतिनिधित्व यशाया और उसके पुत्र करते हैं।
9-11 डानियल अध्याय अलावा पथ 40 की भविष्यवाणी के इतिहास में आ पहुंचा। अतः जब यशाया को अध्याय 6 में 9-11 पर रखा जाता है तो वो भविष्य सूचक रूप से दानियल अध्याय अलाबर के पद 40 के भीतर स्थित होता है। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वो पद 40 के छिपे हुए इतिहास के भीतर स्थित होता है। पद 40 का छिपा हुआ इतिहास तब आरंभ हुआ जब 1992 में सोवियत संघ के पतन के साथ उस पद की पूर्ति हुई। 1992 से लेकर पद 41 के रविवार के कानून तक का काल ही पद 40 का छिपा हुआ इतिहास है जिसे उसी छिपे हुए इतिहास में यहूदा के गोत्र का सिंगबूम हुअर खोलकर उद्घाटित करता है। इससे 9-11 के बाद यशाया को पछली वर्षा का संदेश वाहक मानने के हमारे विचार में ये स्पष्ट होता है कि पछली वर्षा के संदेश का एक भाग जिसे यशाया घोषित कर रहा है दानियल अध्याय अलाबर के पद 41 से 45 तक है।
यशायाह अध्याय 10 में 9-11 पर भविष्य सूचक रूप से खड़े होकर वो ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगली ही घटना अधर्म का फर गैरामान अर्थात रविवार का कानून है और ये दानियल 11 के पद 41 में दर्शाया गया है। यशाया के अंतिम वर्षा संदेश का चित्रण पद 40 के छिपे हुए इतिहास 9-11 के बाद के भीतर स्थापित है। 1979 में पद 40 की पूर्ति यशाया को 1979 के बाद 9-11 पर रखती है जहां उसे वेदी से लिए गए कोयले से अभिषिक्त किया जाता है। यशाया उस दूत का प्रतिनिधित्व करता है जिसका संदेश दानियल 11 के अंतिम 6 पदों को शामिल करता है।
यशाया स्पष्ट रूप से कहता है कि वो और उसके बच्चे चिन्ह और आश्चर्य के लिए हैं। अध्याय 7 पद 3 में यशाया और उसका पुत्र ऊपरी कुंड की नहर के पास धोबी के मैदान के पास के राजमार्ग पर है। यशाया अध्याय 6 में जिसका प्रचार करने के लिए उसका अभिषेक हुआ था उसी पश्चात वर्षा का संदेश प्रस्तुत कर रहा है और वो पश्चात वर्षा के 3 प्रतीकों के पास अपने पुत्र शेयार याशूब के साथ खड़ा है। ऊपरी कुंड की नहर उन दो नलिकाओं का भविष्य सूचक संकेत है जो स्वर्ण तेल से भरी हैं। उनकी पहचान जकरिया करता है और सिस्टर वाइट अक्सर उन पर टिप्पणी करती हैं। वे ऊपरी कुंड की नहर से आने वाले संदेश की पहचान कराती हैं अर्थात पश्चात वर्षा के संदेश की।
यशाया की जल नाली जकरिया की दो नलियों से जुड़ती है और एलन वाइट की टीका जकरिया को 10 कुवारियों के दृष्टांत के साथ जोड़ती है। 6ठे अध्याय में जब वो प्रभु की महिमा देखता है तो यशाया धूल में नम्र हो जाता है। वो पद 3 में निरूपित उस संदेश को जो परमेश्वर की महिमा से पृथ्वी को आलोकित करता है वहन करने के लिए सहमत होता है, और वो वेदी से लिए गए एक अंगारे से शुद्ध किया जाता है और फिर उस सरोवर के पास खड़ा है जो ऊपरी सरोवर के जल से बना है। अध्याय 28 में यशाया अंतिम वर्षा के संदेश को पंक्ति पर पंक्ति के रूप में परिभाषित करता है, और पद 3 में ऊपरी सरोवर भविष्यद्वाणी की कई रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
यशाया जो 9:11 पर एक आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, केवल वही खड़ा होगा जहां ऊपरी तालाब से स्वर्ण तेल नीचे उतरता है। यदि उस आत्मा ने उस अच्छे मार्ग के लिए पूछा होता जो यिर्मयाह के पुराने मार्ग तक ले जाता है, जो यशायाह का धोबी के मैदान के पास का राजमार्ग मार्ग है जहां यिर्मयाह का विश्राम मिलता है। यशायाह का अंतिम वर्षा का संदेश केवल 10 कुंवारियों की रेखा, जकर्याह की 2 स्वर्ण नलिकाओं की रेखा और यिर्मयाह के पुराने मार्ग की रेखा पर ही आधारित नहीं है, और यशायाह भी धोबी के मैदान पर खड़ा है जहां वाचा का दूत लेवी के पुत्रों को चांदी और सोने के समान शुद्ध और परिशोधित कर रहा है। अध्याय 7 के 3 पद में अन्य रेखाओं को लाना एक अत्यंत सरल भविष्य सूचक कार्य है। जकर्याह का तेल और 10 कुमारियां याकूब की सीढ़ी तथा प्रकाशित वाक्य के पहले 2 पदों से संबंधित है, क्योंकि वे सब परमेश्वर और मनुष्य के बीच संचार की प्रक्रिया को संबोधित करते हैं। यिर्मयाह का प्राचीन मार्ग उस पहरेदार को सम्मिलित करता है जो नरसिंगा फूंकते हैं, जिसे दुष्ट और मूर्ख राजा आहाज सुनने से इनकार करता है। वो नरसिंगा भविष्यद्वाणी के सब नरसिंगों को और साथ ही भविष्य सूचक पहरेदारों को भी यशाया के राजमार्ग में ले आता है, जहां यशाया और उसका पुत्र लौदिकिया के अगुए तक एक संदेश पहुंचाने के लिए खड़े हैं।
यशाया और उसका पुत्र शेयारयाशूब, जिसका अर्थ है एक अवशेष लौट आएगा, साथ खड़े हैं और 9:11 को आए अंतिम वर्षा के संदेश की घोषणा को दर्शा रहे हैं। वे दुष्ट राजा राहाज से मिलने जाते हैं और पिता पुत्र के रूप में वे लाइन अपॉन लाइन पद्धति के प्रमुख नियम अल्फा और ओमेगा का प्रतीक बनते हैं। लाइन अपॉन लाइन वो नियम है जिसका प्रतिरूप मिल राइटों के दिन वर्ष सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया था।
11 अगस्त 1850 को प्रकाशित वाक्य 9 के 2 हाई से संबंधित इस्लाम की एक भविष्यवाणी पूरी हुई और मिलरवादी दिन वर्ष सिद्धांत की पुष्टि हुई, जिससे उसी दिन वर्ष सिद्धांत पर आधारित 1850 तराता के बारे में मिलर की भविष्यवाणी को बल मिला। 11 सितंबर 2001 को प्रकाशित वाक्य 9, 10 और 11 के 3 हाई से संबंधित इस्लाम की एक भविष्यवाणी पूरी हुई और अल्फा 8:11-8:50 और ओमेगा 9:11 के सिद्धांत की पुष्टि हुई। जब न्यूयॉर्क की विशाल इमारतें ढह गईं, तो प्रकाशित वाक्य 8 का बलवान स्वर्गदूत उतरा, ठीक वैसे ही जैसे 11 अगस्त 1850 को प्रकाशित वाक्य 10 का बलवान स्वर्गदूत उतरा था, जब ओमेगा की पूर्व छाया अल्फा पूरी हुई थी।
यशायाह और उसका पुत्र केवल रेखा पर रेखा के मुख्य सिद्धांत का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, अपितु वे एलियाह संदेश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पिता और उसके बच्चों के संबंध के माध्यम से चित्रित किया गया संदेश है। वो एलियाह संदेश जो प्रभु के महान और भयानक दिन से ठीक पहले घोषित किया जाता है, ऐसे संदेश की पहचान कराता है जो परमेश्वर के कार्यकारी न्याय के आरंभ से ठीक पहले आता है। परमेश्वर के कार्यकारी न्याय एक ऐसे काल का द्योतक है जिसे प्रभु का महान और भयानक दिन कहा गया है। वो काल रविवार के कानून से आरंभ होता है और आखिरी 7 विपत्तियों तक चलता है। वो काल रविवार के कानून से शुरू होता है और आखिरी 7 विपत्तियों पर समाप्त होता है। इसलिए एलियाह का संदेश अल्फा और ओमेगा के सिद्धांत पर आधारित है और अनुग्रह काल के समापन के निकट आने की चेतावनी के साथ जुड़ा हुआ है। एलियाह के संदेश के साथ एलियाह पर आधारित विभिन्न भविष्यवाणी की रेखाएं भी हैं, क्योंकि एलियाह यीशु के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रतिनिधित्व करता है, और एलियाह तथा यूहन्ना दोनों सिस्टर व्हाइट के अनुसार विलियम मिलर का प्रतिनिधित्व करते थे, और मिलकर एलियाह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोनों 144,000 एलियाह और प्रकाशित वाक्य साथ में महान भीड़ यूहन्ना का प्रतिनिधित्व करते हैं।
यशाया और उसका पुत्र उन पुराने मार्गों पर खड़े हैं जो नींव है, और वे स्वर्णिम तेल प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वे बुद्धिमान कुंवारियां हैं जो धोबी की शुद्धि प्रक्रिया से होकर गुजर रही हैं, जो 22 अक्टूबर 1844 को पूरी हुई थी और जो रविवार के कानून का प्रतीक है। यशाया और वो अवशेष जो लौटते हैं क्योंकि उसके पुत्र शेआरायाशु बे के नाम का अर्थ यही है, 9 अक्टूबर पर पुराने मार्गों पर लौट आने वाले अवशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिता अवशेष का संबंध जो अल्फा ओमेगा का संबंध भी है, और एलिया है का पिताओं और बच्चों के हृदय वाला संबंध भी, यह दर्शाता है कि पिता मिलर और पहले दूत के एक अवशेष आंदोलन के साथ उनका संबंध फिलाडेल्फिया का अल्फा आंदोलन था। अल्फा आंदोलन में पिता मिलर की पहचान एलिया और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के रूप में की गई, जिन्हें यीशु ने उस दूत के रूप में पहचाना जो वाचा के दूत के मार्ग की तैयारी करता है। पहले और दूसरे दूतों के अल्फा इतिहास में हुई वे सभी भविष्यवाणी बा की पूर्तियां तीसरे दूत के ओमेगा के इतिहास में दोहराई जाती हैं।
दर्शन में यशाया के चित्रण के बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लेकिन यहां हम केवल ये बता रहे हैं कि यशाया विशेष रूप से उन विभिन्न सत्यों की पहचान कर रहे हैं जो नौ कैपिटल मीरा संदेश के केंद्र को बनाते हैं। इन सभी रेखाओं पर हमने अभी चर्चा की है, और निस्संदेह ऐसी और भी कई हैं जो अध्याय 7 के पद 3 में मिलती हैं।
8वें पद में भविष्य सूचक सत्य और तीव्र हो जाता, क्योंकि ये उस कुंजी की पहचान करता है जिससे पद 40 का छिपा इतिहास खुलता है, और आश्चर्यजनक रूप से वही कुंजी उसी पद में पहचानी जाती है जिसमें दोनों 50:9-20 वर्षीय समय भविष्यवाणियों की शुरुआतें चिह्नित की गई हैं।
क्योंकि सीरिया का सिर दमिश्क है और दमिश्क का सिर रेजिन है, और 65 वर्षों के भीतर एफ्राम ऐसा टूट जाएगा कि वो अब कोई राष्ट्र न रहेगा, और एफ्राम का सिर सामरिया है और सामरिया का सिर रेमलेया का पुत्र।
यदि तुम विश्वास न करोगे तो निश्चय ही स्थिर न ठहरोगे। यशाया 7:9-9।
यशाया के अंतिम वर्षा संदेश के चित्रण में मूसा के 7 गुना भी सम्मिलित है, क्योंकि पद 8 की 65 वर्षीय भविष्यवाणी इसराइल के उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों के 2022 वर्षों के विखराव के लिए आरंभ बिंदु को चिन्हित करती है। उसी पद में वो कुंजी भी है जो 3 भविष्योक्तिपूर्ण रेखाओं को खोलती है, दानियेल 11:40 में 1989 में सोवियत संघ के पतन की, दानियेल 11 कथन की, और यशाया 8:8 की। इन 3 रेखाओं यशाया 8:8, दानियेल 11 कथन 40 में कुंजी पद 8 और 9 के सिर है, जब सिर की इस कुंजी को उन 3 समानांतर पदों पर लागू किया जाता है तो यूक्रेन युद्ध के इतिहास और शीघ्र आने वाले तृतीय विश्व युद्ध का द्वार खुल जाता है। जब वो भविष्योक्तिपूर्ण दरवाजा खुलता है तब दानियेल 11 के पद 11 से 16 को 1989 में सोवियत संघ के पतन के बाद वाले दानियेल के 11 के पद 40 के समानांतर इतिहास के रूप में देखा जाता है। पद 40 के छिपे इतिहास का खुला वो सत्य है जो उन कुछ चुनिंदा सत्यों में से एक है जिन्हें अनुग्रह का समय बंद होने से ठीक पहले यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की मुहर खुलने के साथ साथ खुला हुआ पहचाना जाता है।
यशाया के अध्याय 8 का पहला पद मोरओवर शब्द से आरंभ होता है, जो ये संकेत करता है कि अध्याय 8 अध्याय 7 पर अध्यारोपित किया जाना है। केवल इतना ही नहीं कि पहला शब्द मोर ओवर है, अध्याय 8 का पद 3 अध्याय 7 के पद 3 से जुड़ा हुआ है, जो दूसरी गवाही के रूप में दिखाता है कि इन दोनों अध्यायों को पंक्ति पर पंक्ति लागू किया जाना है। दोनों अध्यायों के 3 नंबर के पद यशाया के पुत्रों में से एक की पहचान कराते हैं, और दोनों के नाम इस कथा में निहित भविष्यवाणी के संदेश को व्यक्त करते हैं। शीर्जाशुभ का अर्थ है एक अवशेष लौटेगा, और महिर शलाल हशबाज का अर्थ है लूट के लिए शीघ्र। पहले शीर जाशुब का उल्लेख होता है, फिर महिर शलाल हशबाज का, जो बाइबल में सबसे लंबा नाम है। एक द्वारा दर्शाया गया अल्फा छोटा है, और इस मामले में उसे अवशेष के रूप में भी पहचाना गया है, और 22 द्वारा दर्शाया गया ओमेगा बड़ा है,
और उसका प्रतिनिधित्व बाइबल के सबसे लंबे नाम द्वारा किया गया है, जो रविवार के कानून की तेज गतियों का भी प्रतीक है।
शेआर याशूब द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया अल्फा शेष जान तीसरे पद में अपने पिता यशाया के साथ है। मिलकर वे अल्फा और ओमेगा है, और वे एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जिसमें अंतिम वर्षा के तीन अलग अलग उल्लेख है।
तब यहोवा ने यशाया से कहा, अब तू अपने पुत्र शेआर याशूब को साथ लेकर आहाज से मिलने जा, ऊपरी तालाब की जल नहर के सिरे पर, धोबी के खेत के मार्ग पर। यशाया 7:3।
यशाया 144,000 का प्रतीक है और 9,011 के आह्वान का प्रतिनिधित्व करते हुए वो जुलाई 2023 के आह्वान का भी प्रतिनिधित्व करता है। 9,011 के समय यशाया एक लाउदी की आई है, जिसका प्रतिनिधित्व याकूब वंचक द्वारा किया गया है, जो एसाव का ज्येष्ठाधिकार लेने वाला था, जबकि एडवेंटवाद को प्रभु के मुंह से उगल दिया जाता है। और 2023 में यशाया विजयी इसराइल का प्रतिनिधि ही करता है। यशाया उस व्यक्ति का प्रतिनिधि ही करता है जो परमेश्वर का संदेश प्रस्तुत कर रहा था, जो इस तथ्य से जाग उठता है कि वो लाओदिकियाई है, और फिर एक अंगारा उसे शुद्ध करके उसे फिलाडेल्फियाई बना देता है।
यशाया को परमेश्वर की महिमा का एक अद्भुत दर्शन हुआ। उसने परमेश्वर की शक्ति का प्रगटीकरण देखा, और उसकी महिमा का दर्शन करने के बाद उसे ये संदेश मिला कि वो जाकर एक विशेष काम करे। उसने स्वयं को उस काम के लिए सर्वथा अयोग्य महसूस किया। किस बात ने उसे अपने आप को अयोग्य समझने पर मजबूर किया? क्या उसने परमेश्वर की महिमा देखने से पहले अपने आप को अयोग्य माना था? नहीं, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने धार्मिक स्थिति में समझता था। परंतु जब सेनाओं के प्रभु की महिमा उस पर प्रकट हुई, जब उसने परमेश्वर की अकथनीय महिमा का दर्शन किया, तो उसने कहा, हाय, मैं नाश हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठों वाले लोगों के बीच रहता हूँ, क्योंकि मेरी आँखों ने राजा सेनाओं के प्रभु को देखा है। तब सराफों में से एक मेरे पास उड़ा, जिसके हाथ में एक जीवित अंगारा था, जिसे उसने वेदी से चिमटे द्वारा लिया था, और उसने उसे मेरे मुंह पर रखकर कहा, देख, ये तेरे होंठों को छू गया है, और तेरी अधर्मता दूर हो गई है, और तेरा पाप शुद्ध किया गया है। ये वही कार्य है जो व्यक्तियों के रूप में हमारे लिए किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि वेदी से वो जीवित अंगारा हमारे होंठों पर रखा जाए। हम वो वचन सुनना चाहते हैं, तेरी अधर्मता दूर हो गई है और तेरा पाप शुद्ध किया गया है। रिव्यू एंड हेरल्ड, June 4, 1889।
यशाया के 6 अध्याय में कब तक 9:11 से लेकर रविवार के कानून तक की अवधि का एक प्रतीक है, और 6 अध्याय 9:11 का प्रतिनिधित्व है। 7-9 वो संदेश प्रस्तुत करते हैं जो यशाया ने यहूदा के धर्मत्यागी नेतृत्व को दिया, और उस चित्रण को भी जो 144,000 की मुहरबंदी के समय होता है, जब इफ्रैम के मध्य ठो कर खाते हैं। उसी दर्शन में यशाया को वो लिखता है कैसे बड़खड़ लो।
देखो, मैं और वे बच्चे जिन्हें यहोवा ने मुझे दिए हैं इसराइल में चिन्हों और चमत्कारों के लिए हैं, यहोवा सेनाओं की ओर से जो सियोन पर्वत पर वास करता है। यशाया 8:18।
यशाया और उसके बच्चे 7-9 में मिलने वाली पहेलियों के भीतर चिन्ह हैं। उस दिन या उस समय के किसी भी उल्लेख के संदर्भ में 7-9 पूरे दर्शन के मुख्य संदर्भ है। 18वीं आयत बताती है कि यशाया और उसके पुत्र चिन्ह है, और 18वीं आयत के आसपास की आयतें उस समयावधि की पहचान करती हैं जब इन चिन्हों को पहचाना जाना है।
और उनमें से बहुत से ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और टूटेंगे और फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। साक्ष्य को बांध दे, मेरे शिष्यों के बीच व्यवस्था पर मुहर लगा दे, और मैं प्रभु की बाट जहूंगा जो याकूब के घराने से अपना मुख छिपाता है, और मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। देखो, मैं और वे बालक जिन्हें प्रभु ने मुझे दिए हैं इसराइल में चिन्हों और आश्चर्यों के लिए हैं, से नाओं के प्रभु की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास करता है। यशाया 8:15-18।
जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं उनका प्रतिनिधित्व यशाया हाया और उसके दो पुत्र करते हैं।
वे हैं जिनसे प्रभु ने अपना मुख छिपा लिया था, जो एक ऐसी विशेषता है जो जुलाई 2023 के बाद लैव्य व्यवस्था 26 की प्रार्थना की आवश्यकताओं के प्रति जागृत होने वालों में पाई जाती है। वे इस तथ्य के प्रति जागते हैं कि उनकी स्वीकारोक्ति में ये शामिल होना चाहिए कि प्रभु उनके विरुद्ध चला था, अर्थात उसने उनसे अपना मुख छिपा लिया था। गवाही को बांधो, व्यवस्था पर मुहर लगाओ का आशय उन 144,000 पर मुहर लगने से है जिन्हें बहुतों के विपरीत रखा गया है। बहुतों को बुलाया जाता है परंतु थोड़े चुने जाते हैं। बहुतों को यशायाह और उसके दो पुत्रों जो थोड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं के विपरीत दिखाया गया है। बहुतों वे 5 मूर्ख कुमारियां हैं और इसी कारण उनके साथ 5 बातें घटती हैं। वे ठोकर खाते हैं और गिरते हैं और टूटते हैं और फंसते हैं और पकड़े जाते हैं। वे ठोकर खाते हैं क्योंकि उन्होंने अंतिम वर्षा के संदेश को अस्वीकार कर दिया है।
क्योंकि हकलाते होठों और पराई जीभ से वो इस प्रजा से बोलेगा, जिनसे उसने कहा, ये वो विश्राम है जिससे तुम थके हुए को विश्राम दे सको, और ये ताजगी है, तो भी वे सुनना न चाहते थे। परंतु उनके लिए यहोवा का वचन आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, यहां थोड़ा वहां थोड़ा बन गया, ताकि वे जाएं और पीछे गिरें और टूट जाएं और फंदे में फंसे और पकड़े जाएं। यशाया 28:11-13।
यशायाह अध्याय 8 में मुहर लगाने के समय दुष्टों के पतन का वर्णन करता है, जिसका प्रतिनिधित्व आहाज करता है, और अध्याय 28 की 13वीं आयत में वो उसी समूह की पहचान करता है। उनके गिरने का कारण ये है कि वे उस अंतिम वर्षा के संदेश को अस्वीकार करते हैं जो उनके लिए रेखा पर रेखा था और जिसे हकलाते होंठों वाले के रूप में दर्शाए गए लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पेंटेकॉस्ट पर कुतर्की यहूदियों ने चेलों पर नशे में होने का आरोप लगाया क्योंकि वे संदेश को समझ नहीं सके। उनकी दृष्टि में वो संदेश हकलाते होंठों से दिया जा रहा था।
अध्याय 7 के 3 इस्सीन, यशाया अपने पुत्र शेयार याशुब के लिए भविष्य सूचक अल्फन हाय, और शेयार याशुब अपने पिता के संदर्भ में ओमेगा है, पर अपने भाई के संबंध में अल्फा है। अल्फा और ओमेगा के प्रतिनिधियों के रूप में वे वहां खड़े हैं जहां स्वर्गीय पवित्र स्थान से आने वाली 2 सुनहरी नलिकाएं एक कुंड बना रही हैं, ठीक यिर्मयाह के पुराने पथ के राजमार्ग पर, उस मैदान में जहां सन का वस्त्र दागदार से निर्मल श्वेत में बदल जाता है, जैसे वाचा का दूत लेवी के पुत्रों को शुद्ध करता है, वैसे ही यशाया और शेयार याशुब को भी। वहां पहुंचकर वो दुष्ट और मूर्ख राजा आहाज के सामने लैव्य व्यवस्था 26 के 7 गुना के विषय में मूसा के पुराने मार्ग से का संदेश प्रस्तुत करता है, जो उसी पद में ये स्थापित करता है कि सिर एक राजा है या राजा का राज्य या किसी राज्य की राजधानी है।
वह कुंजी परमेश्वर के वचन का प्रकाश प्रकट करती है ताकि 2014 में शुरू हुआ यूक्रेन युद्ध बाइबल की भविष्यवाणी के विषय के रूप में देखा जा सके, जिसे 144,000 के सील किए जाने के समय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतिम 3 राष्ट्रपतियों के इतिहास के दौरान घटित होने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंतिम वर्षा का संदेश यशाया द्वारा अध्याय 10 और 11 में प्रस्तुत किया गया है, और वो दानियल 11 की अंतिम 6 आयतों के आंतरिक और बाहरी इतिहास का वर्णन करता है। पहली आयत अर्थात आयत 40 यशाया द्वारा अध्याय 6 से 9 में चित्रित की गई है, और फिर अध्याय 10 और 11 में 1989 में खोले गए संदेश के आंतरिक और बाहरी इतिहास प्रस्तुत किए गए हैं। अंतिम वर्षा संदेश के हर प्रमुख तत्व को उस दर्शन में दर्शाया गया है।
अध्याय 10 के अंतिम पद उसी भविष्य सूचक इतिहास को चिन्हित करते हैं जिसका प्रतिनिधित्व अध्याय 11 के अंतिम पद करते हैं। अध्याय 10 बाहरी है और अध्याय 11 आंतरिक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 कलीसियाएं आंतरिक हैं और मुहरे बाहरी। अध्याय 10 के अंतिम पदों में पापाई शक्ति यरूशलेम के विरुद्ध अपना हाथ हिला रही है। ये दानियल 11 के पद 45 में, जहां सहायता करने वाला कोई नहीं होता, पापाई शक्ति के अंत तक पहुंचने के वर्णन के समानांतर है।
वो उस दिन भी नोब में ठहरेगा, वो सियोन की बेटी के पर्वत यरूशलेम की पहाड़ी के विरुद्ध अपना हाथ हिलाएगा। देखो, प्रभु सेनाओं का प्रभु भय के साथ डालों को काट डालेगा और ऊंचे कद वाले काट गिराए जाएंगे और घमंडी दीन किए जाएंगे, और वो लोहे से वन की झाड़ियों को काट डालेगा और लेबानोन किसी पराक्रमी के द्वारा गिरा दिया जाएगा। यशाया 10:30-34।
अध्याय 10 का अंत मानव अनुग्रह काल का समापन है और दानियल अध्याय 11 का समापन भी वहीं होता है।
और वो अपने राजप्रासाद के तंबुओं को समुद्रों के बीच उस महिमाय पवित्र पर्वत पर खड़ा करेगा, तो भी उसका अंत हो जाएगा और उसका कोई सहायक न होगा। और उसी समय मीकाएल, जो तेरी प्रजा के पुत्रों के लिए खड़ा रहने वाला महान प्रधान है, उठ खड़ा होगा, और ऐसा क्लेश का समय होगा जैसा कि किसी जाति के होने से लेकर उस समय तक कभी नहीं हुआ। और उसी समय तेरी प्रजा के वे सब बचाए जाएंगे, हर एक जो पुस्तक में लिखा हुआ पाया जाएगा। दानियल 11:45-12:1।
दसवां अध्याय पहले पद में अन्यायपूर्ण आदेश से शुरू होता है, जिसे सिस्टर व्हाइट रविवार का कानून कहती है।
हाय उन पर जो अन्यायपूर्ण फरमान जारी करते हैं और जो ऐसे अत्याचारी नियम लिखते हैं जिन्हें उन्होंने निर्धारित किया है। यशाया 10:1।
अध्याय 10 की शुरुआत रविवार के कानून से होती है, जो दानियल अध्याय 11 की आयत 41 के अनुरूप है, और इसका समापन दानियल 11 की आयत 45 के इतिहास में मीकाएल के खड़े होने के समानांतर पर होता है।
एक मूर्ति पूजक विश्राम दिन स्थापित कर दिया गया है, जैसे दूरा के मैदान में सोने की मूर्ति खड़ी की गई थी, और जैसे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने एक फरमान जारी किया था कि जो कोई इस मूर्ति के आगे झुककर उसकी आराधना नहीं करेगा उसे मार डाला जाए, वैसे ही एक घोषणा की जाएगी कि जो रविवार की संस्था का आदर नहीं करेंगे उन्हें कैद और मृत्यु की सजा दी जाएगी। इस प्रकार प्रभु के विश्राम दिन को पैरों तले रौंदा जाता है, परंतु प्रभु ने घोषित किया है, हाय उन पर जो अन्यायी आदेश जारी करते हैं और वे पीड़ादायक बातें लिखते हैं जिन्हें उन्होंने निर्धारित किया है। यशाया 10:10। सपन्याय 8:10। 18:2-8:3। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 14:91।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के महाभूकंप में, जो पद 13 में रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है, भूकंप से जुड़े इस्लाम के तीन प्रतीक है जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के धरती के पशु को उस समय झकझोरते हैं जब वो अजगर के समान बोलता है। यशाया अध्याय 10 में रविवार के कानून को एक अधर्मपूर्ण फरमान के रूप में दर्शाया गया है, जिस पर हाय की घोषणा की गई है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के महाभूकंप में पद 13 से पद 18 तक तीसरी हाय का इस्लाम चार इस्लामी प्रतीकों और उस प्रहार के साथ पहचाना गया है, जो वो रविवार के कानून के समय संयुक्त राज्य अमेरिका पर करता है। और उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और दूसरी हाय बीत गई, देखो तीसरी हाय शीघ्र आती है, और सातवें दूत ने तुरही फूंकी और जातियां क्रोधित हो गई। अध्याय 10 दानियल 11 के 41वें पद से लेकर 45वें पद तक, जब पापसी का अंत होता है, पापसी सत्ता का चित्रण करता है। 40वां पद अध्याय 10 की कथा का भाग नहीं है, क्योंकि यशाया 40वें पद के छिपे हुए इतिहास को दर्शा रहा है, जब अंतिम वर्षा का संदेश आहाज द्वारा प्रतिनिधित्व की गई धर्मत्यागी कलीसिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अध्याय 11 का निष्कर्ष उसी इतिहास में पापसी सत्ता से मुक्ति को दिखाता है।
और प्रभु मिस्री समुद्र की खाड़ी को सर्वथा नष्ट कर देगा, और अपनी प्रचंड वायु से वो नदी पर अपना हाथ हिलाएगा और उसे सात धाराओं में विभाजित कर देगा, और लोगों को सूखे पाव पार जाने देगा, और अश्शूर से उसके लोगों में से जो बचे रहेंगे उनके लिए एक राजमार्ग होगा, जैसे उस दिन इसराइल के लिए था जब वो मिस्र देश से निकल आया था। यशाया 11:15-16।
यशाया का 10वां अध्याय उसी इतिहास का बाहरी पक्ष है और 11वां अध्याय उसका आंतरिक पक्ष। परमेश्वर के वचन में बाहरी और आंतरिक समांतरताएं बहुतायत में मिलती हैं,
और ये दो समांतर अध्याय यशाया द्वारा प्रस्तुत तीसरे स्वर्गदूत की चेतावनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरे स्वर्गदूत की चेतावनी को ईश्वरीय प्रेरणा के माध्यम से कई प्रकार से संक्षेपित किया गया है, परंतु इसका एक अत्यंत उपयोगी विवेचन ये है कि ये अनुग्रह काल के समापन से जुड़ी घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है और व्यक्तिगत तैयारी की आवश्यकता पर भी बल देती है। यशाया अध्याय 10 घटाओं को दर्शाता है और अध्याय 11 तैयारी को।
अनुग्रह काल के अंत और क्लेश के समय के लिए तैयारी के कार्य से संबंधित घटनाएं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई हैं, परंतु असंख्य लोगों को इन महत्वपूर्ण सत्यों की उतनी भी समझ नहीं है, मानो वे कभी प्रकट ही न किए गए हों। शैतान चौकस रहता है कि हर वो प्रभाव छीन ले जो उन्हें उद्धार के लिए बुद्धिमान बना सकता है, और क्लेश का समय उन्हें तैयार न पाएगा। जब परमेश्वर मनुष्यों को इतनी महत्वपूर्ण चेतावनियां भेजता है कि उनका चित्रण इस रूप में किया गया है मानो वे स्वर के मध्य उड़ते पवित्र स्वर्गदूतों द्वारा घोषित की गई हों, तब वो विवेक बुद्धि से संपन्न हर व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वो उस संदेश पर ध्यान दे। पशु और उसकी प्रतिमा की उपासना के विरुद्ध सुनाए गए भयानक न्याय रेवलेशन 14:11 सबको ये प्रेरित करने चाहिए कि वे भविष्यवाणियों का परिश्रम पूर्वक अध्ययन करें, ताकि जान सकें कि पशु का चिन्ह क्या है और उसे लेने से कैसे बचें। परंतु जन समूह सत्य सुनने से अपने कान फेर लेता है और काल्पनिक कथाओं की ओर मुड़ जाता है। प्रेरित पौलुस ने अंतिम दिनों की ओर देखते हुए कहा, समय आएगा जब वे स्वस्थ उपदेश सहन नहीं करेंगे, 2 टिमोथी 4:9। वो समय अब पूरी तरह आ चुका है। बहुसंख्यक लोग बाइबल का सत्य नहीं चाहते, क्योंकि वो पापी संसार प्रेमी हृदय की इच्छाओं में बाधा डालता है, और शैतान उन्हें वही दो के उपलब्ध कराता है जिनसे वे प्रेम करते हैं। परंतु पृथ्वी पर परमेश्वर के पास ऐसे लोग होंगे जो बाइबल को, और केवल बाइबल को, सभी सिद्धांतों का मानदंड और सभी फहनों का आधार माने। विद्वानों के विचार, विज्ञान के निष्कर्ष, कलीसियाई परिषदों के मतवाक्य या निर्णय, जिन कलीसियाओं का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, वे जितने अधिक और परस्पर विरोधी हैं और बहुमत की आवाज़, इनमें से न तो कोई एक न ही सब मिलकर धार्मिक विश्वास के किसी भी बिंदु के पक्ष या विपक्ष में प्रमाण के रूप में माने जाने चाहिए। किसी भी सिद्धांत या आज्ञा को स्वीकार करने से पहले हमें उसके समर्थन में स्पष्ट प्रभु यों कहता है कि मांग करनी चाहिए। शैतान निरंतर ये प्रयत्न करता रहता है कि परमेश्वर की जगह मनुष्य की ओर ध्यान आकर्षित हो। वो लोगों को प्रेरित करता है कि वे बिशपों, पादरियों और धर्मशास्त्र के प्रोफेसरों को अपने मार्गदर्शक माने, बजाय इसके कि वे शास्त्रों की खोज कर स्वयं अपना कर्तव्य जाने। तब इन नेताओं के मनों पर नियंत्रण करके वो अपनी इच्छा के अनुसार जन समूहों को प्रभावित कर सकता है। महान संघर्ष 595-595।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।